नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार खरवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप 11वीं कक्षा में कबीर का दूसरा पद पढ़ेंगे। इससे पहले हम कबीर दास के संबंध में थोड़ा सा फिर से जान लें। जन जागरण के प्रतीक, निर्गुण ज्ञानाश्रयी धारा के प्रवर्तक और जिनके निर्भीक अखड़ता व फक्कड़ाना स्वभाव का कोई प्रतिद्वंदी नहीं, ऐसे क्रांतिकारी संत कवि का नाम कबीर दास है। ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व के धनी कबीर दास ने एक ओर धार्मिक अंधविश्वासों की धूल उड़ाई तो वहीं दूसरी ओर जीव जगत और आत्मा परमात्मा के विषय में गूढ़तम रहस्यों पर अपना मंतव्य दिया। ऐसे संत कवि के जन्म और जीवन वृत्त अन्य मध्यकालीन कवियों की तरह विवादास्पद बना हुआ है। इसका कारण यह है कि इतना कुछ कहने के बावजूद उन्होंने अपने संबंध में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा है। इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने अपनी अपनी प्राप्त सामग्रियों के आधार पर अलग अलग अनुमान प्रस्तुत किया है। कबीर चरित बोध के अनुसार उनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। इसी के आधार पर उनका जन्म स्थान काशी बताया गया है। उनके जन्म के संबंध में किंवदंती प्रचलित है कि उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ था, जो लोक लज्जा के कारण उन्हें लहरतारा तालाब के मटकोर में फेंक आई थी। नीरू और नीमा नामक निसंतान जुलाहे दंपत्ति ने उनका पालन पोषण किया। वैसे यह भी विवादास्पद है, कबीर बुनकर का काम किया करते थे, यह तो उनकी साखी से भी प्रमाणित है। कबीर सूफी फकीर शेख तकी के शिष्य माने जाते हैं, लेकिन काशी में प्रकट भए हैं रामानंद चेताए से यह स्पष्ट है कि वे रामानंद की शिष्य परंपरा में आते थे। कबीर दास की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही, लेकिन स्वाभिमान ने उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं दिया। उन्होंने अपने जीवन भर पंडित पुरोहितों और मुल्ला मौलवियों को फटकार लगाया, जिसका परिणाम यह हुआ कि वे एक ओर ऐसे लोगों के आक्रोश का पात्र बने रहे और दूसरी ओर जन सामान्य ने उन्हें अपना नायक बना लिए। ऐसे निर्भीक और अखर संत का निधन 1518 ईस्वी में माना जाता है। मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, कि इस स्वीकृति से यह माना जाता है कि वे अनपढ़ थे। उनकी संग्रह उन्हीं के शिष्यों द्वारा किया गया है। यह प्रचलित है कि उनकी वाणियों का सबसे प्रथम संग्रह धर्मदास ने वीजक में किया। इसके तीन भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। इनमें साखी का महत्व सर्वोपरि है। इसके संबंध में कहा गया है कि साखी आँखिन ज्ञान की, सबद गाए जाने वाले पद हैं और रमैनी वर्णानुक्रम से लिखे गए दोहे और चौपाई का रूप है। कबीर दास की सामाजिक चेतना मानवतावादी है। भारतवर्ष के इतिहास में भक्ति के लिए एक ऐसा उर्वर अध्याय है जहां एकांतिक भक्ति भावना को लोकमानस में पनपने का अवसर मिला। तत्कालीन भक्ति मार्ग के दो सबसे बड़े अवरोधक थे, शास्त्र और संप्रदाय। कबीर दास ने इन दोनों ही अवरोधों की धूल उड़ाते हुए व्यापक जनजीवन के लिए सुलभ और सहज मार्ग प्रशस्त किया। इससे उनकी सामाजिक चेतना लोकोन्मुख होकर सर्वग्राह्य हो उठी। कबीर दास ने व्यापक सामाजिक समन्वय में शास्त्र और संप्रदाय को अवरोधक मानकर न केवल इन दोनों की धज्जी उड़ाई, बल्कि उनके मानने वाले पंडितों और मौलवियों की भी अच्छी खबर ली। कबीर जन जागरण के प्रतीक और सच्चे समाज सुधारक थे। सबसे पहले उन्होंने सांप्रदायिकता की ऐसी की तैसी की। उस समय हिंदू और मुसलमान के बीच आपसी सहजता समाप्त हो गई थी। दोनों अपनी अपनी सांप्रदायिकता के नशे में चूर हम तुमसे ऊपर समझा करते थे।
एक मंदिर और ईश्वर को श्रेष्ठ समझता था तो दूसरा मस्जिद और अजान को श्रेष्ठ। ऐसे में कबीर दास ने साफ साफ कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही ब्रह्म के अंश हैं, और अगर कोई ऐसा नहीं मानता है तो
ज्योतु बाभन बाभनी जाया और राह ते काहे न आया, ज्योतु तुरक तुड़किनी जाया पेटे काहे न सुन्नत कराया। यहाँ एक ओर ब्राह्मणों और तुर्कों के कुलाभिमान को नकारा गया है तो दूसरी ओर भेदभाव पर प्रहार भी किया गया है। उन्होंने उन तमाम रीतियों नीतियों और मान्यताओं पर गहरी चोट की जो सामाजिक सांप्रदायिक एकता के मार्ग में बाधक हैं, इसलिए उन्होंने एक साथ हिंदू और मुसलमान दोनों को फटकारते हुए कहा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तेते वह चक्की भली पीस खाए संसार। अर्थात पत्थर की मूर्ति पूजने से अगर ईश्वर मिल सकता है तो फिर पहाड़ की पूजा करनी चाहिए, और इससे अच्छी तो वह पत्थर वाली चक्की है जो जनमानस के लिए उपयोगी भी है। इसी तरह उन्होंने मुसलमानों के अजान और इबादत की इमारत की खिल्ली उड़ाई। कांकर पाथर जोड़ी कै मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। अर्थात कंकर पत्थर जोड़कर तुम मस्जिद बना लेते हो और उसके ऊपर चढ़कर अजान देकर यही साबित करना चाहते हो ना कि तुम्हारा खुदा बहरा हो गया है। ऐसे में कबीर दास की यह आस्था है कि चींटी के पग नेबर बाजत सो भी साहब सुनता है। कबीर दास की सामाजिक चेतना में सांप्रदायिकता रहित समाज की कल्पना थी। इसी तरह वे मानवतावादी उदार भावना के प्रतिष्ठापक रहे। उनकी दृष्टि में मानवता ही महत्वपूर्ण है। उस समय हमारे समाज में जातीयता कुलीनता और इसी तरह के अन्य भेदभाव भरे हुए थे। वर्णवादी सामाजिक व्यवस्था में समाज को ऊंच और नीच स्तरों में बांट दिया था। फलतः समाज जातीयता के अहंकार और तिरस्कार को जी रहा था। कबीर दास ने इस तरह की सारी कुरीतियों और अंधविश्वासों के ऊपर तीखा प्रहार किया। तत्कालीन समाज में धर्म के नाम पर दिखावे और ढकोसला का बोलबाला था। तिलक चंदन लगाकर अथवा जटाजूट दाढ़ी बढ़ाकर तथा कथित साधु सन्यासियों और योगियों की भरमार थी। ऐसे कामचोरों और कायरों से समाज में अंधविश्वास फैल रहा था। कबीर दास ने साफ साफ कहा कि दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई बकड़ा भले ही हो जाए सन्यासी तो हो ही नहीं सकता है। अब उनकी भक्ति के संबंध में थोड़ा बहुत जान ले। भक्ति द्राविर उपजी लायो रामानंद कहकर कबीर ने यह स्पष्ट किया है कि मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का उदय दक्षिण में हुआ, जिसे उत्तर भारत में रामानंद लाए, और कबीर दास उन्हीं रामानंद के शिष्य हैं। उनके शिष्य तो तुलसीदास भी हैं, लेकिन एक गुरु के दो शिष्य और उन दोनों ने लोक समन्वय हेतु भक्ति का अपना अपना स्वतंत्र पथ निर्मित किया। जहाँ राम भक्ति काव्य परंपरा में तुलसीदास से सस्त माने जाते हैं, वहीं संत भक्ति काव्य परंपरा का प्रवर्तन कबीर से हुआ है। जहाँ तक कबीर दास की भक्ति भावना का प्रश्न है तो इस संबंध में यह जान लेना आवश्यक है कि वे तत्व चिंतक थे। क्योंकि वे अनपढ़ थे इसलिए कबीर दास को संत संगति का आश्रय लेना पड़ा, जबकि तुलसीदास ने शास्त्र अध्ययन से सार ग्रहण किया। यहाँ दोनों की चर्चा इसलिए आवश्यक लगती है क्योंकि दोनों की दृष्टि में भक्ति के माध्यम से लोक समन्वय की भावना थी, और दोनों के ऊपर परंपरा का प्रभाव बतलाना सामान्य सी बात है। कबीर दास की भक्ति भावना को निम्नलिखित रूप में दिखलाया जा रहा है, जिसमें परंपरा का अनुकरण और उनकी मौलिकता
दोनों पर प्रकाश डाला गया है। कबीर दास को निर्गुण पंथ का प्रवर्तक माना जाता है। यह सत्य है कि क्योंकि उनके निर्गुणवादी पंथ का अनुसरण परवर्ती काल तक बना रहा है। निर्गुणवाद में ईश्वर को गुणातीत, सर्वव्यापक और सर्वज्ञ माना जाता है, जिसे ब्रह्म, परमात्मा आदि संबोधन दिया गया है। कबीर दास ने उसे राम तो कहा है, लेकिन वह दशरथ सुत राम नहीं है, यह नाम स्मरण का माध्यम मात्र है।
संतो देखत जग बौराना, सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे असनाना। आत्म मारी पखान ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। अर्थ इस प्रकार है, कबीर दास कहते हैं कि हे संत देखो, यह संसार जो है बौरा गया है, अर्थात पागल हो गया है। अगर इन संसार के लोगों से सच्ची बात कही जाती है तो वे मारने के लिए दौड़ते हैं, वहीं अगर इनसे झूठी बात कही जाती है तो झूठी बातों पर वे विश्वास कर लेते हैं। कबीर दास का कहना है कि उन्होंने नियम करने वाले को देखा है, धर्म कर्म करने वाले को देखा है, प्रातः जो स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनको भी देखा है। ऐसे लोगों को देखा है जो आत्मा को मारकर, स्वयं को मारकर, मतलब अपने मान सम्मान को भूलकर पखान ही पूजे, मैंने पत्थर की पूजा करते हैं, उनमें बस वही ज्ञान रह गया है। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुरैना। उन्होंने बहुत से पीर औलिया को देखा। पीर औलिया मतलब जो धर्मगुरु और संत ज्ञानी हैं, वे पीर औलिया। तो बहुत से पीर औलिया को देखा है, ये किताब पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। कई मुरीद तदबीर बतावे, उनमें वह जो ज्ञाना, कई जो है इनमें वे भाग्य बतलाते हैं, शिष्य बनाते हैं, तरह तरह के उपाय बतलाते हैं, उनके अंदर इसी प्रकार का ज्ञान है। आसन मारी डिंभ धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। वे आसन मार कर बैठते हैं, तरह तरह के आडंबर करते हैं, उनके मन के अंदर जो है बहुत ही गुमान है, घमंड है। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना। वे पीपल की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, जगह जगह तीर्थ यात्राएं करते हैं, और इनके गर्भ में वे जो है सब कुछ भूल जाते हैं। टोपी पहरी माला पहरी, छाप तिलक अनुमाना। वे टोपी पहनते हैं, गले में माला धारण करते हैं, और उनके इन क्रियाकलापों को देखकर ही, मस्तक पर तिलक छाप को देखकर ही, वे जो हैं कैसे हैं, किस प्रकार के आडंबर वाले व्यक्ति हैं, यह अनुमान लगाया जा सकता है। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। यद्यपि वे साखी गाते हैं, शब्द गाते हैं, लेकिन साखी शब्द को गाते हुए भी आत्मा में ही परमात्मा का निवास है, इस परम तत्व बात को जो है वे नहीं जानते हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहिमाना। हिंदू जो है वे राम को प्यारा बतलाते हैं, राम की पूजा करते हैं, राम को परम सत्ता मानते हैं, तो तुर्क यानी मुसलमान जो है वे रहीम को अपना सब कुछ मानते हैं। लेकिन आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मर्म न काहू जाना। आपस में दोनों धर्म के नाम पर लड़ते रहते हैं। धर्म का वास्तविक मर्म क्या है, वास्तव में धर्म क्या है, इसके संबंध में ना तो हिंदू जानते हैं सही रूप से, और ना तो मुसलमान सही रूप से जानते हैं। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। ऐसे जो धर्मगुरु हैं, वे घर घर लोगों को धर्म के संबंध में मंत्र देते फिरते हैं, तरह तरह की बातें कहते फिरते हैं, और कहें अगर हम तो उनके अंदर में जो है कि वे बहुत महिमाशाली है, बहुत महिमा मंडित है, इस बात का जो है उन्हें बहुत अभिमान है। तो ऐसे गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। ऐसे जो गुरु है और ऐसे जो शिष्य है, अंतकाल में दोनों को पछताना पड़ता है। ऐसे जो गुरु हैं उनका भी
अंत अच्छा नहीं है और ऐसे उनको मानने वाले जो शिष्य हैं उनका अंत भी बुरा होता है। कबीर दास कहते हैं कि कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भ्रम बुलाना। इन भ्रमों को ऊपर जो ईश्वर को पाने के लिए धार्मिक बातें बतलाई गई है वे सभी क्या है तो वे सभी आडंबर हैं, वे सभी क्या है तो वे सभी दिखावा हैं। तो कबीर दास जो है इनको भ्रम कहा है और इन्हें भूलने के लिए कहा है। कबीर दास कहते हैं कि केतिक कहो कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना। वे कितनी बार कहे हैं, अनेक बार कहा है कि ईश्वर जो है वे सहज हैं, बिल्कुल आराम से ईश्वर जो है पाने योग्य है। सहजता से ही जो है हम ईश्वर को पा सकते हैं। उस ईश्वर को पाने के लिए तरह तरह के ढोंग आडंबर वह करना जो है बिल्कुल बेकार है। ईश्वर सहज साधना से मिल सकता है, संतजन सहज स्वाभाविक प्रेम से उसमें लीन हो सकते हैं। एक बार फिर से अर्थ को समझ ले। कबीर दास कहते हैं कि हे साधको देखो सारा जग पागल हो गया है, यदि उनके सामने सच्ची बात कही जाए तो वे नाराज होकर मारने दौड़ते हैं और झूठी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। आगे पाखंडों का खंडन करते हुए कबीर दास जी कहते हैं कि उन्होंने नियम धर्म दिनचर्या आदि का कठोरता से पालन करने वाले बहुत से संतों को देखा है। ये ऐसे लोग हैं जो प्रातः स्वयं को शुद्ध करने के लिए स्नान करते हैं किंतु अपने भीतर छिपे परमात्मा को छोड़कर जो व्यर्थ के नियमों व्रतों में उलझता है और पत्थरों की पूजा करता है उनका ज्ञान थोथा और निस्सार है। कबीर दास हिंदू और मुसलमान दोनों को आड़े हाथों लेते हुए कहते हैं कि मैंने बहुत से पीर पैगंबर देखे हैं जो अपने शिष्यों को धार्मिक ग्रंथ कुरान आदि पढ़ाते हैं, समझाते हैं, स्वयं भी पढ़ते हैं। वे अपने शिष्य बनाकर उन्हें तरह तरह के उपाय बताते हैं। वास्तव में ऐसे पाखंडियों ने खुदा को जाना ही नहीं है। यह जो साधक समाधि की मुद्रा में आसन लगाए बैठा है और जिसे साधक होने का मन में अहंकार है, जो पीपल के वृक्ष और पत्थर की मूर्तियों की पूजा कर रहा है, तीर्थ और व्रतों का पालन कर रहा है, वह सब छल और भुलावा है, साधना के नाम पर भटकाव है। उनके गले में पड़ी हुई माला टोपी तिलक छाप आदि को देखकर ही उनके पाखंड का अनुमान लगाया जा सकता है। वे लोगों को प्रभु ज्ञान देने के लिए साखी और शब्द गाते फिरते हैं किंतु वास्तव में उन्हें स्वयं परमात्म तत्व का ज्ञान नहीं है। हिंदू कहता है कि मुझे राम प्रिय है, मुसलमान रहमान को रहीम को मानता है। इस प्रकार राम और रहीम के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर ये दोनों लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। सत्य यह है कि न ईश्वर को हिंदू समझता है और न मुसलमान समझता है। ईश्वर के नाम पर लड़ने वाला व्यक्ति मूर्ख और अज्ञानी है। ऐसे पाखंडी लोग घर घर जाकर लोगों को गुरु मंत्र बांट रहे हैं, यह सब अपनी महिमा बढ़ाने का फेर ही है। ऐसे तथाकथित गुरु अभिमानी हैं। ऐसे पाखंडी गुरु अपने अज्ञानी शिष्यों सहित भव सागर में डूब जाएंगे। परम ब्रह्म के बिना उन्हें अंत में पछताना पड़ेगा। कबीर दास कहते हैं कि हे संतो सुनो, ये सब पाखंडी भ्रम में भूले हुए हैं। इन्हें मैंने कितना कहा, कितना समझाया, किंतु ये मानते नहीं। सच तो यही है कि वह ईश्वर सहज साधना से मिल सकता है। संत जन सहज स्वाभाविक प्रेम से उसमें लीन हो सकते हैं। अब हम कुछ विशेष बातों को पद के संबंध में जान लें। यहाँ कबीर का अक्खर फक्कर और निर्भीक स्वभाव दृष्टिगोचर होता है। वे सारे जग को पागल बताकर उन्हें झकझोरना चाहते हैं। यह धार्मिक आडंबर पर चोट की गई है। मूर्ति पूजा, पीपल पूजा, छाप तिलक, कुरान पढ़ना, शिष्य बनाना, सभी आडंबर पर उन्होंने गहरा प्रहार किया है। कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों की अच्छी खबर ली है। दोनों ही जातियां उन्हें महापुरुष मानती है। यद्यपि कबीर गुरु को परमात्मा से भी ऊंचा मानते हैं, किंतु वे ढोंगी गुरु पर चोट करना नहीं भूलते। कबीर की भाषा अत्यंत प्रचंड, बेलाग, बेलौस तथा स्पष्ट है। इसमें व्यंग्य की पैनी धार है। अनुप्रास की छटा जगह जगह दर्शनीय है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।